नमस्कार आदाब दोस्तों, अपने वादे के मुताबिक हम हाजिर हैं आपके मोबाइल वाणी पर क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम लेकर, जहां आपको मिलेंगे आपके पढ़ाई लिखाई से जुड़े सारे अनसुलझे सवालों के जवाब, वो भी आपके चहेते शिक्षक के द्वारा। तो चलिए आज शुरू करते हैं सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र के साथ।
बच्चों, मैं पप्पू कुमार राय, सहायक प्राध्यापक पूर्वोत्तर महाविद्यालय सोनपुर सारण। आज हम समाजशास्त्र के 37वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हमें स्ट्रक्चरल चेंज, संरचनात्मक परिवर्तन, विकास एवं उपनिवेशवाद पर ध्यान आकर्षण करना है, पढ़ना है। संरचनात्मक विकास, किसी भी समाज के किसी रीति रिवाज, आदर्शों एवं मूल्यों में जब परिवर्तन आ जाता है, यानी जब नयापन आ जाता है, तब यह संरचनात्मक परिवर्तन कहा जाता है। यदि किसी समाज के सभ्यता एवं संस्कृति में बदलाव आ जाता है, इसे ही समाज में संरचनात्मक परिवर्तन कहते हैं। परिवर्तन एक व्यापक प्रक्रिया है। समाज के किसी भी क्षेत्र में विचलन या बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। किसी भी समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, धार्मिक, नैतिक, भौतिक आदि सभी क्षेत्रों में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहा जा सकता है। सामाजिक परिवर्तन भी अनवरत प्रक्रिया है। संरचनात्मक परिवर्तन प्रकृति में भी योजनाबद्ध तरीके से होता रहता है। संरचनात्मक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन होता है। कुछ समाजशास्त्रियों के अनुसार समाज में संरचनात्मक परिवर्तन मुख्यतः तीन कारणों से होता है, आविष्कार, खोज एवं प्रसार। समाज में आंतरिक विभेद भी समाज के संरचना को बदलने में मददगार होते हैं। भारत में उपनिवेशवाद ने संरचनात्मक परिवर्तन में मुख्य भूमिका निभाया है। उपनिवेशवाद ने राजनैतिक, आर्थिक एवं सामाजिक संरचना को नवीन परिवर्तन में परिवर्तित किया है। औद्योगिकरण, नगरीकरण की वजह से समाज में भी संरचनात्मक परिवर्तन आया है। हम लोग यहाँ पर औपनिवेशवाद की चर्चा करेंगे, खास करके भारत में। किसी देश, राज्य का या किसी भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेना और उसके संपत्ति का अपने फायदे के लिए दोहन करना उपनिवेशवाद कहलाता है। एक स्तर पर एक देश के द्वारा दूसरे देश पर शासन करना उपनिवेशवाद माना जाता है। आधुनिक काल में पश्चिमी उपनिवेशवाद का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है। इतिहास में प्रायः 15वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद का काल रहा है। इस काल में यूरोप के लोगों ने विश्व के विभिन्न भागों में उपनिवेश बनाए। उपनिवेशवाद के कई कारण होते हैं, जैसे लाभ कमाने की इच्छा, अपने देश की शक्ति को बढ़ाना या अपने साम्राज्य को बढ़ाना, तथा उस देश की संपत्ति का उपयोग अपने हित में करना या अपने देश के हित में करना। उपनिवेशवाद से तात्पर्य है कि किसी शक्तिशाली एवं विकसित राष्ट्र द्वारा किसी निर्बल एवं अविकसित देश पर उसके संसाधनों को अपने हित में दोहन करने के लिए राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना भी होता है। उपनिवेशवाद में किसी देश पर सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक नियंत्रण स्थापित करना भी माना जाता है। भारत के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि यहाँ काल और समय के अनुसार विभिन्न प्रकार के समूहों का उन विभिन्न क्षेत्रों पर शासन रहा जो आज के आधुनिक भारत को निर्मित करते हैं। इतिहास ऐसे अनेक उदाहरणों से भरा पड़ा है जिसमें दूसरे देशों पर कब्जा करके राजनीतिक, आर्थिक शक्ति का विस्तार किया गया है। विश्व के विभिन्न देशों पर उपनिवेश स्थापित किया गया। पिछले 3 शताब्दियों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उपनिवेशवाद का काल रहा है। अंग्रेजों, डचों तथा फ्रांसीसियों के साथ साथ स्पेन तथा पुर्तगालियों ने भी उपनिवेशवाद को स्थापित किया। इस प्रक्रिया में ब्रिटेन अपनी शक्तिशाली नौ परिवहन शक्ति यानी नौ सेना तथा औद्योगिक क्रांति के बल पर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा। 19वीं शताब्दी के अंत तथा 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक तक उपनिवेशवाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। समाजशास्त्री आरजे हार्वर्थ के अनुसार उपनिवेशवाद विशिष्ट आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक शक्तियों का मिश्रण है, जिसके द्वारा एक साम्राज्यवादी शक्ति अन्य क्षेत्र के लोगों पर अपना नियंत्रण रखती है तथा इसका विस्तार करती है। ब्रिटिश उपनिवेशवाद पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। इसने प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक व्यवस्था पर बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप किए, जिससे ब्रिटिश पूंजीवाद का विस्तार हुआ और उसे मजबूती मिली, और यह उस क्षेत्र में विकास का एक कारण भी बना। जैसे भारत में ब्रिटिश उपनिवेश ने न यहाँ के केवल भू स्वामित्व के नियमों को बदला, अपितु यह भी निर्धारित किया कि कौन सी फसल किस क्षेत्र में उगाई जाए, कौन सी नहीं। इसने उत्पादन के क्षेत्र को भी नहीं छोड़ा, वस्तुओं के उत्पादन की प्रणाली और उसके तरीकों को भी बदला। जंगलों की कटाई करा और चाय की खेती की शुरुआत कराई। इन्होंने अपने अनुसार कानून बनाए। इन्होंने नई औद्योगिक नीति लाया, जिससे भारत में बड़े पैमाने पर उद्योगों का जाल हुआ बिछा, यानी औद्योगिक विकास हुआ। यातायात एवं माल ढुलाई के लिए रेलवे का विस्तार इत्यादि कई सारे डेवलपमेंट के कारण हम देखते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपनिवेशवाद ने समाज में संरचनात्मक परिवेश किया और हम कह सकते हैं कि उपनिवेशवाद ने भारत में आधुनिक भारत की नींव रखा और विकास को एक नया आयाम दिया। धन्यवाद।
तो दोस्तों, ऐसे ही हर रोज क्वेश्चन मार्क कार्यक्रम में आप अलग अलग विषयों के शिक्षकों को सुन सकेंगे और नई नई जानकारियाँ ले सकेंगे। इतना ही नहीं, हर माह के अंत में शिक्षक आपसे पूछेंगे कुछ सवाल जिसका सही जवाब देकर आप बन सकते हैं मोबाइल वाणी के स्टार स्टूडेंट। और अगर आपके मन में भी विषय से जुड़ा कोई सवाल हो तो बिना देर किए मोबाइल में दबाएं नंबर 3 और रिकॉर्ड करें अपनी बात। और हाँ साथियों, इस कार्यक्रम को लाइक करें, सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी साझा करें। नमस्कार।